پر آ جائے. تو آج جو میں ڈسکس کروں گا وہ پہلے میں انفارمیشن کے ساتھ نالج کو کانٹراسٹ کروں گا, کیونکہ ایک عام جو خیال ہے وہ یہ کہ انفارمیشن اور نالج سینونیمس کر رہے ہیں, اور اگر سینونیمس نہیں بھی ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. یعنی کہ جیسے جیسے انفارمیشن بڑھے گی نالج بڑھے گی, صحیح ہے؟ نالج اور انفارمیشن میں ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ پریزیوم کیا جا رہا ہے. دوسرا ایک تو یہ پریزمپشن ہے کہ نالج اور انفارمیشن ایک ہی چیز ہے, ایک یہ سمجھا جاتا ہے عام خیال ہے, فلسفے کی دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں, لیکن ایک عام خیال یہ ہے. دوسرا عام خیال یہ ہے کہ انفارمیشن غیر اقداری ہوتی ہے, ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں انبائزڈ انپریجڈسڈ ہوتی ہے. تو پہلے میں یہ دیکھنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ نالج اور انفارمیشن دو الگ الگ چیزیں سمجھی جاتی ہیں فلسفے کی دنیا میں. یہ کوئی میں انکشاف نہیں کر رہا, بالکل اسٹیبلش ہے, آپ لوگ بس اس کو ذہن میں رکھیں. اور دوسری چیز جو ذرا فلوسافیکل ہے وہ یہ کہ انفارمیشن کی نیوٹرلٹی کو میں کوشچن کروں گا, کنسپریسی تھیوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ فلوسافیکل بنیاد. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے. انفارمیشن از را ڈیٹا, ٹھیک ہے؟ انفارمیشن بٹس اینڈ پیسز میں جمع کیا گیا ڈیٹا ہوتا ہے. اگر وہ ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کے انالیسس کے نتیجے میں جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں اسے عام طور پر علم سمجھا جاتا ہے. نالج از واٹ یو ہیو ڈیرائیوڈ تھرو دی انالیسس آف دا گیون انفارمیشن, اور نالج از دی اوور آرچنگ کیٹیگری آف انفارمیشن. انفارمیشن کی اوور آرچنگ کیٹیگری کے جو انفارمیشن آپ کو ملی اس سے جو آپ نے نتائج اخذ کیے تھرو انالیسس, تھرو کریٹیکل انالیسس, وہ آپ کی نالج ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جتنی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اتنی ہی نالج آپ کو مل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کتنے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کتنا انالیسس آپ کا بڑھ رہا ہے. آج کے انسان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے کے انسان کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا تھا, لہذا وہ گہرائی میں سوچتا تھا, ڈیپتھ میں سوچتا تھا. یعنی کہ جو بھی سوچنے والا آدمی ہوتا تھا نا وہ چھوٹی موٹی سطح کا نہیں ہوتا تھا, پھر وہ بہت پینیٹریٹنگ تھاٹ ہوتی تھی. اتنی پینیٹریٹنگ تھاٹ ہوتی تھی کہ دو دو ہزار سال تک اس کی تھاٹ زندہ رہتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذہن کی صلاحیت جو ہوتی تھی وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی تھی پیریفریز میں گھومنے والی انفارمیشن, تو وہ پینیٹریٹڈلی سوچتا تھا. آج کے انسان کا پرابلم یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اسکیٹرڈ ہے اور ملٹی ڈائمینشنل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا, سوچتا نہیں ہے, وہ سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. لہذا وہ انفارمیشن کو ایز اے فیکٹ ویلیو اور نالج کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے. ایک نالج مل رہی ہے, جیسے ہمارے یہاں ہیومن رائٹ ڈسکورس ہے تو وہ سمجھتے ہیں اچھا ہیومن رائٹ کیا کیا ہے, اچھا 1 2 3 4, تو اس کا مطلب ہے کہ نالج مل رہی ہے ہیومن رائٹ کی نالج, چلو بھائی آپ فیل دو پوری سوسائٹی کو اس گنڈے سے وہ ہانک میں نکل جاتا ہے. اچھا بھائی یہ کیا ہوتا ہے, میڈیا کی آزادی بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اس کو وہ ایک نالج کے طور پہ لیتا ہے. وہ شہر آ گیا گاؤں سے, اسے پتا چلا میڈیا جو ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے, اور جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو اسے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نالج مل گئی مجھے, اویئرنیس ہوگی, بس اب جا کے میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دیتا ہے. سوچتا نہیں ہے وہ کہ بھائی میڈیا کی آزادی سے کیا مراد ہے, ہیومن رائٹس کہاں سے آ گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اتنا وقت نہیں ہو سکتا. پہلا تو میجر اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج کے آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ سوچنے کے لیے اس کا وقت نہیں ہے. لہذا نالج اور انفارمیشن سینونیمس اس لیے ہو گئے کہ وہ سوچنے کا اس کا وقت ہی نہیں ہے, اور اگر وقت ہے تو صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس. اتنی کمپلیکیٹڈ نالج ہے, انفارمیشن ہے, نالج اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے ایسس کرنے کی. میرے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ میں اینٹی بیکٹیریل سوپ کے ہیومن اسکن کے اوپر امپیکٹ کو جان سکوں, میرے پاس نہیں ہے صلاحیت, نہیں نا, میں نے نہیں پڑھا, مجھے نہیں پتا. لہذا میں کیا کرتا ہوں, انحصار کر لیتا ہوں ڈاکٹروں کے اوپر, یا فارماکولوجسٹ کے اوپر, یا ڈرمیٹولوجسٹ کے اوپر. और ये समझ लेता हूँ अपने तहीं खुद ही कि अगर डर्मेटोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि एंटी बैक्टीरियल सोप से स्किन प्रोटेक्ट होती है, तो मैं अपने बच्चों को एंटी बैक्टीरियल सोप से नहलाना शुरू कर देता हूँ, आप खुद नहाना शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं करता। यानी कि मैं बजाते खुद मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं फलसफा वलसफा पढ़ना छोड़ के फार्माकोलॉजी में एडमिशन लूँ या फार्मासिस्ट बन जाऊँ या जाके मेडिसिन पढ़ूँ, ये मेरे बस से बाहर है। ना मैं कर सकता हूँ, ना मेरे पास वक्त है, ना मुझे इसकी जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, ट्रस्ट कर लेता हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को। इस तरह आप जिंदगी हार रहे हैं। एक आदमी कहता है कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, तो मैं नहीं हूँ इकोनॉमिस्ट, मुझे क्या पता किस तरह अच्छी इकोनॉमी क्या होती है, बुरी इकोनॉमी क्या होती है। वो कह रहे हैं अच्छी इकोनॉमी है तो अच्छी इकोनॉमी, वो कह रहे हैं बुरी इकोनॉमी तो बुरी इकोनॉमी होगी। तो उसके इंडिकेटर्स क्या है, नौकरी वोकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह बढ़ रही है तो मुतमईन हो जाते हैं। अगर तनख्वाह कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपको ये बता देते हैं कि देखिए महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है, और कुव्वत खरीद इसलिए बढ़ रही है कि लोगों के पास पैसा है। इससे फर्क साबित हुआ कि आप माशी तौर पर ताकतवर हो रहे हैं। तो इशू ये है कि आप ट्रस्ट करते चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आप सोचने के वक्त नहीं है, और अगर सोचने के लिए वक्त निकाल लें तो काबिलियत नहीं है, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इतनी मल्टी डायमेंशनल सोर्सेज से आती है कि अथॉरिटी जो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की, वो क्रेडिबल है या नहीं है उस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा भाई ये खबर जो है कौन से अखबार में छपी है, इवनिंग स्पेशल में, जंग में छपी है, अच्छा जंग में छपी है तो ठीक ही छपी है, उसमें छपी है, डॉन में छपी है तो उससे बेहतर होगी ना, और न्यूज वीक में आ गई तो और बेहतर होगी, और उसका आपने क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बना दिए। लेकिन इसके पास आपके पास क्या कोई अल्टीमेट एपिस्टेमोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है कि वो गलत नहीं हो सकती, तो इसके पास आपके पास कोई दलील है। तो पहली बात तो ये कि इन्फॉर्मेशन ने नॉलेज को सुपरसीड किया है, नॉलेज के स्पीयर को सुपरसीड कर लिया है, और इतना सुपरसीड किया है कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो वाकई नॉलेज रखते हैं किसी चीज के ऊपर, जब अपने पूरे इल्म को सामने रखकर आपको कोई बात बताते हैं तो आप उसे इल्म के तौर पर नहीं इन्फॉर्मेशन के तौर पर लेते हैं। बात समझ आ रही है कि एक आदमी ने पूरी जिंदगी फलसफा पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद वो अपनी एक राय दे, और एक आदमी ने जिंदगी में कभी फलसफा नहीं, उसको कुछ नहीं पता, वो बराबरी की सतह पर आ जाए, मैं तो आपको फलसफे से डिसएग्री करता हूँ। भाई किस बुनियाद पर डिसएग्री करते हो, क्या है तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट, क्या तुमने पढ़ा लिखा है? कुछ नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन तुम कह रहे हो मैं नहीं मानता। तो इल्म जो है उसकी बेहुरमती का दौर है, नॉलेज की बेहुरमती का दौर है, लफ्जों की बेहुरमती का दौर है। हाइडेगर कहता था कि एक वक्त आएगा 1945 में उसे कि जो समझदार आदमी है वो नीचे चला जाएगा और जो कमीने हैं वो ऊपर आ जाएगा। ये एक जगह नहीं हुआ, पूरी दुनिया में होगा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें सोचने वाला आदमी है वो नीचे चला जाए, बीनीथ द सरफेस, और जो जो सोचता नहीं है, जो स्पॉन्टेनियस एब्रप्टली काम, वो ऊपर आ जाए, वो वैल्यूबल हो। यू नो व्हाट आई मीन? तो दूसरी ये कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपसे डिमांड ही नहीं लोग करते कि किसी गहराई में सोचें। यानी कि फलसफे का स्टूडेंट भी कहता है कि आसान फलसफा पढ़ाए, फलसफा ही पढ़ने आओ, कह रहा आसान फलसफा, वो कैसे होगा आसान, जितना है उतना तो होगा ना, तो वो भी मुश्किल फलसफा नहीं पढ़ना चाहता। तो इशू ये है कि हर एक आदमी आसानी से कोई काम कर लेना चाहता है, जिसके नतीजे में वो नॉलेज की जो डिमांड है वो पूरी करने के काबिल ही नहीं था। तीसरा जो इशू है वो ये है कि अगर आप नॉलेज को बगैर एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ डिटैच करते हैं, यानी कि एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को आप डिटैच कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज मुतासर हो जाएगी। यानी कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी ऐसे सोर्स से जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऐसे सोर्स से जिसकी, लेट सपोज कि आपके मार्च में ऑथेंटिसिटी है, तो मेरा नॉलेज, मेरी नॉलेज आपकी नॉलेज से इंफीरियर समझी जाएगी। तो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है अगर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो वो इंस्टीट्यूशंस नॉलेज क्लेम बन जाते हैं बजाय ये कि वो महज इंफॉर्मेशन है। बात समझ आ रही है? वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाते खुद नॉलेज की अथॉरिटी बन जाते हैं, हालांकि उनके अंदर सलाहियत नहीं है, वो सिर्फ डेटा जमा कर रहे हैं, वो सिर्फ डेटा जमा करने वाले लोग हैं, लेकिन वो क्लेम कैसे करते हैं जैसे मेरे पास नॉलेज है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा जमा कर लेते हैं, डेटा जमा कर नॉलेज क्लेम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर ये सलाहियत थी कि आप डेटा जमा कर लेते हैं, आपने पॉलिटिकल थियरी नहीं पढ़ी, सोशल थियरी नहीं पढ़ी, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, आपने लॉ किया, आप निकल गए सोशल एक्टिविज्म के लिए, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं रह दिया, वो नॉलेज बना दिया आपने, और उसको नॉलेज बनाकर इम्पोज कर दिया सोसाइटी के ऊपर। तो जो लोग इंफॉर्मेशन जमा करने की क्रेडिबिलिटी रखते हैं वो बजाते खुद नॉलेज की क्रेडिबिलिटी का क्लेम करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसकी उनके पास कोई बेसिक ट्रेनिंग मौजूद नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये पूरा मामला जो इंफॉर्मेशन का है इस बुनियाद पे रेस्ट करता है या इस प्रिजम्पशन पे खड़ा हुआ है कि इंफॉर्मेशन बजाते खुद वैल्यू न्यूट्रल, बजाते खुद अनप्रेजिडिस, बजाते खुद अनबाइस। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय, मैं जो अपनी पोजीशन बताता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि इंफॉर्मेशन कभी भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एजेंसी इज ह्यूमन, इंफॉर्मेशन जब भी कोई जमा करेगा वो इंसान ही होगा ना, इंसान गैर अकदारी नहीं हो सकता, इंसान वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता, इंसान दुनिया का कोई इंसान जितना बड़ा साइंटिस्ट हो जितना बड़ा रैशनलिस्ट हो वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने तफसील से नॉलेज को हमने डिफाइन किया था। एक लफ्ज में अगर एक स्टेटमेंट में नॉलेज इज द रिलेशन बिटवीन द नोवर एंड द नोन, इल्म जो है जानने वाले और जाने जाने वाले का बाहमी ताल्लुक। अगर मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है और मैं सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हूँ, और मुझमें और इसमें जो ताल्लुक है वो मेरा इल्म है। जितना बेहतर मेरा इसके साथ ताल्लुक होगा उतनी बेहतर मेरी नॉलेज होगी। चार सतहों के ऊपर मैं कम से कम ये ताल्लुक पैदा कर सकता हूँ। मैं अकल की बुनियाद से इसको समझ सकता हूँ, मैं हवासों की बुनियाद पर इसको समझ सकता हूँ, मैं अपने विज्ञान की बुनियाद पर इसको समझ सकता हूँ, या कोई मुझसे ज्यादा जानने वाला मुझे बता सकता है कि ये क्या है। उसके अंदर एक पांचवां सोर्स है, उस दिन मैंने तफसील से नहीं डिस्कस किया, इसे मैं बाद में, कि लैंग्वेज मुझे बता सकती है कि ये क्या है, लेकिन वो चूंकि अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर ही उसे हम फिट कर लेते हैं। तो ये देखें ये बात ठीक नहीं है, ये बात हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट नहीं है कि मजहब के अंदर क्वेश्चन नहीं किया है। क्वेश्चन की नौयत होती है, क्वेश्चन की नौयत की बात है। मैं अपने वालिद से ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपका ये डिसीजन ठीक था या ठीक नहीं था, है ना, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि मैं आपको अपना बाप ही तस्लीम नहीं करता, है ना, रिश्ते की नौयत बदल जाएगी। अगर मैं ये कर दूँ तो फिर रिश्ते की नौयत बदल जाएगी। اس طرح ریلیجن کے اندر بھی کچھ سوالات ہیں، تو سوالات جو ہے تعلق کی نوعیت کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ریلیجن کو کوشچن، ریلیجن میں کوشچن نہیں کیے جاتے ہیں، ریلیجن کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ریلیجن میں کوشچن کیے جاتے ہیں، کیے جاتے رہے ہیں. بعض بڑے بڑے یعنی کہ سچویشن کے اندر بعض اوقات خلیفہ کی پوزیشن الگ ہے اور فقیہ کی پوزیشن الگ ہے. خلیفہ کہتا ہے بھائی یہ تمہاری فقیہ پوزیشن تمہاری ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں مانتا تمہاری، لیکن وہ آرگیومنٹ دیتا تھا. یو نو واٹ آئی مین؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ریلیجن کے اندر کوشچن نہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ کوشچنز کے نتیجے میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو. اگر وہ بھی جہاں جہاں پر بھی وہ آیت ہے، میں تو ظاہر ہے قرآن کے حوالے سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ جہاں پہ بھی وہ آیت پڑھیں، مجھ جیسا جاہل آدمی کو بھی نظر آتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد وہ آگے میں بتاتے ہیں کہ خشیت الہی بھی پیدا ہونی چاہیے. غور و فکر کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کمپیوٹر بنانے کے آسان اور سستے طریقے نہیں نکال سکتے غور و فکر کر کے. غور و فکر کرنے کے نتیجے میں خشیت الہی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے نا. اسی طرح ریلیجن میں ایسے سوالات جس کے نتیجے میں خشیت الہی کے امکانات بڑھ جائیں، وہ کوشچن ہمیشہ ویلکم کیے گئے ہیں. اور غلط ٹھیک ہے نا، آپ جب کوشچن اٹھاتے ہیں تو کسی علم کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں، ہوا میں نہیں آپ اٹھا سکتے کوئی کوشچن. اگر تم کسی میری بات سے ڈس ایگری کرتی ہو تو تمہارے پاس کوئی نالج ہوگی نا، اس کو پیش کرو تم کہ بھائی یہ ہے میرے پاس پیش کرنے کے لیے. اب دیکھیں ایک یہ میں ایسی ذرا سا بات بیچ میں سے ہٹ جائے گی خالص، لیکن یہ یونیورسٹی کا جنرل پرابلم ہے اس لیے میں اس کو ڈسکس کروں. ہمارے یہاں آتے ہیں فلسفے میں بہت آتے ہیں اس طرح کے لوگ، 20 سال کا لڑکا ہے، 20 سال اس کی عمر ہے، وہ آ گیا اسکیپٹک ہوا، سب غلط ہے، سب یہ ہے، ریلیجن بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ ریلیجن ٹھیک ہے، میں کیسے مان لوں کہ بدھزم ٹھیک ہے یا اسلام ٹھیک ہے یا ہندوازم ٹھیک ہے. چلے چونکہ مجھے نہیں پتا چل رہا کون سا ریلیجن تھی، ریلیجن چھو. اچھا بھائی یہ پالیٹیشن بھی برا ہے، یہ سب یہ پتا نہیں چل رہا، یہ بھی سب برا. تو پھر یہ جو ہے یہ ماں باپ کے جو رشتے ہوتے ہیں، یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد، لہذا ماں باپ کا رشتہ. وہ ایک نیہلزم میں چلے جاتے ہیں بالکل. 20 سال کی عمر میں وہ اس نتیجے پہنچ گیا، لیٹ سپوز کہ اس نے سب کو دیکھ لیا، اس نے ریلیجن کو پورا پڑھ لیا اکیڈیمیکلی، زندگی میں کبھی ریلیجن کے اوپر کچھ نہیں کھول کے دیکھا، ایک لفظ نہیں پتا، نہ عربک آتی ہے، نہ پرشین آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، کچھ نہیں پڑھا. صرف اس کا خیال ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہندوازم کو فالو کرتے ہیں، یہ اس کو پتا ہے. تو بھائی تم کسے فالو کرتے ہو؟ تم طے کرو نا، تم کہو اچھا بھائی میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، جاؤ پڑھو پہلے اسلام، لگاؤ زندگی. ابھی 20 سال کی عمر میں تم کہاں سے پہنچ گئے اس نتیجے پہ کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے کوئی آدمی، تو بھائی یہ تمہارا پرابلم تو نہیں ہے نا، اس کا پرابلم ہے. تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اگر تمہیں یہ لگتا تھا کہ بہت سارے مذہبی اسکالر جو ہیں ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں، تو کم از کم اس مذہبی اسکالر جو ڈس ایگری کرتا اس کا ہی پورا ٹیکسٹ پڑھ لو بھائی، تمہاری ذمہ داری ہے نا. نہیں تم نے کچھ نہیں پڑھا، وہ سب اٹھا کے تم نے ریجیکٹ کر دیا اور تم نے کہا کہ میں جو ہے کچھ نہیں کروں گا، میں سب کو گالیاں بتوں گا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ فلسفی کی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو فلسفیانہ سوچ رکھنے والا آدمی ہے، یہ اگر آپ کسی چیز کو ڈینائی کریں، ایک آدمی بدھا کو گالیاں بک رہا ہے، بھائی اگر تم ایک آدمی ہے جس نے کچھ کیا، اس کے بعد کرنے کے بعد جنگلوں میں چلا گیا، بادشاہ چھوڑ دی، اس کے بعد اس نے اپنی خیالات پھیلائے بیفور کرائسٹ اور اب تک کے چل رہے ہیں، تم کو گالیاں بک رہے ہو، تم اسے پڑھ کے جا کے دیکھ لو. مسلمان نہیں ہو، مسلمان نہیں تھا وہ لڑکا. تو وہ میں نے کہا بھائی تم بدھسٹ ہو، بائی برتھ بدھسٹ ہو، تم بدھزم کو پڑھ لو جا کے. تم نے وہ پڑھا بھی نہیں، تم نے یہ بھی نہیں پڑھا، تم نے اسلام بھی نہیں پڑھا، تم ہر چیز کو کریٹیسائز کرے جا رہے. تو بھائی جب آپ کسی چیز کو نفی کرتے ہیں تو آپ کی میں انلائٹنمنٹ فارم کو کریٹیسائز کرتا ہوں. تو میں نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے نا، یہی کرتا ہوں میں صبح شام تک یہی کرتا رہتا ہوں. میرا کام ہے ویسٹرن تھاٹ کو پڑھنا اور پڑھانا، یہی کرتا ہوں نا، اس لیے میں اس کو اعتراض کر سکتا ہوں، مجھے حق ہے نا. لیکن اس کا نتیجہ پوری ویسٹرن تھاٹ کے حوالے سے جب میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی آرگیومنٹ ہوگا نا. تو جو ریلیجن کے حوالے سے جو بھی سوال آپ بتائیں اس میں آپ کی ضروری ہوتی ہے آپ کچھ نالج کا آپ کا کوئی رول ہو. कुछ आपकी पार्टिसिपेशन, वो महज इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन उसको आप जिंदगी में बरत रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो ट्रेडिशन के अंदर जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो एक अलग है, और एकेडेमिकली जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो एक अलग चीज होती है। तो अगर आप मुतमईन है उस प्रैक्टिस से तो आप पढ़ते रहे नमाज, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप उसकी नमाजी हकीकत को जानना चाहते हैं तो उन लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने नमाजी हकीकत को पहचानने के लिए पूरी पूरी जिंदगियां लगाई हैं। उस सतह की फिर आप नमाज भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी ये बताने को मैंने आर्ग्यूमेंट ये एस्टेब्लिश किया था कि इंफॉर्मेशन वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती, नहीं हो सकती। क्यों? अब एक आप इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू लिखकर उसमें से दो एरो हेड इस तरह से निकाल, है ना। मैं जो स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, देखिए इंफॉर्मेशन वैल्यू न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकती। वैल्यू न्यूट्रल इसलिए नहीं हो सकती, यू ऑलवेज लुक एट रियलिटी थ्रू अ पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीबडी हैज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे का एक नुक्ता नजर होता है, जाविया निगाह होता है, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, और हम सबका एक पर्सपेक्टिव है। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है दो चीजों से, कम अज कम दो चीजों से मिलकर बनता है। इसको मैं लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड नॉन टेक्निकल फॉर्म में बताया। एक आपका प्रेजेंट बनता है, आप पॉइंट ऑफ व्यू बनता है आपके प्रेजेंट से, और दूसरी डायमेंशन है आपके पोजिशन से। मेरी माशरे में क्या पोजिशन है और मेरा माशरे में क्या हाल है, मेरा हाल और मेरा मकाम, मेरी माशरे के अंदर क्या हैसियत है और मेरा क्या हाल है, प्रेजेंट क्या है मेरा और मेरी पोजीशन क्या है। ये आपकी जो पोजीशन है इसकी भी दो डायमेंशन होती है, वन इज योर अर्न पोजीशन, द अदर इज योर प्री गिवन पोजीशन। यानी कि आपकी जो पोजीशन है उसकी भी दो दायरे हैं। एक दायरा वो है जो मुझे मेरी हैसियत मिली है इस वजह से कि मैं किसी की औलाद हूं, किसी मुल्क का शहरी हूं, किसी खास रंगो नस्ल का हूं, किसी खास जात का हूं, किसी खास जेंडर से ताल्लुक रखता हूं, मैं औरत हूं, मर्द हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, काला हूं, गोरा हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मेरी बहुत सारी चीजें मेरी प्री गिवननेस होती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जो मैं मर्द पैदा हो गया ये मेरे बस में नहीं था, मैं मेरा गोरा नहीं हूं, मैं काला हूं, ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं जो जबान बोलता हूं ये मेरी प्री गिवननेस, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं ये मेरी प्री गिवननेस, ये मुझे मिली है, ये हैसियत मुझे मिली है, मैं ये हैसियत लेकर पैदा हुआ। एक मेरी प्री गिवननेस है और एक मेरी अर्न पोजीशन है कि मैंने पाकिस्तान में सब लोग फलसफा नहीं पढ़ते, मैं फलसफा पढ़ा। पाकिस्तान में सब लोग रिलीजन को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानते, मैं मानता हूं। पाकिस्तान में सब लोग जिंदगी को उस तरह नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। मेरी एक अर्न पोजीशन थी माशरे में, मेरी खुद से हासिल करता हैसियत भी है। तो मेरा जब भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा तो मेरी प्री गिवननेस और मेरी अर्न पोजीशन के ताल्लुक में पैदा होगा। लिहाजा हम सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे उन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप टटोलें तो आप देखेंगे कि आपकी माशरे में हैसियत आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मुतासिर कर रही है और माशरे में आपकी अर्न पोजीशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मुतासिर कर रही है। और क्या ये आदमी एक, एक एक लड़की है जो एक ऐसे घराने में पैदा हुई है जिसमें माँ बाप का जो ताल्लुक है वो हाईली, बाप जो है वो बहुत ज्यादा जालिम है और भाई भी बहुत जालिम है और बेटे वो क्या कहते हैं चाचे और मामे सब जालिम है और हाईली शोविनिस्टिक है, और उसकी माँ और उसकी बहन और उसकी मामियां और उसकी फुफ्तियां ये सब जो है सबने से, लेकिन वो कहती है कि मैं इस पोजीशन को कबूल नहीं करती हूं, मैं तो रिएक्ट करूं, मैं इन सबको सीधा करता हूं, है मैं वो किसी एनजीओ को ज्वाइन करती हूं, वो लॉ पढ़ ले, लॉ पढ़ के वो ह्यूमन राइट एक्टर अपने आप को ही बचा लेती है और फिर कहती है मैं पूरे माशरे की औरतों को बचाने निकल खड़ी हूँ। तो उसकी अर्न पोजीशन, उसकी प्री गवर्नेंस कुछ और थी, उसकी अर्न पोजीशन कुछ और है। अब उसकी जो नई अर्न पोजीशन है वो मुतासर करेगी ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पाकिस्तान में कोई औरत कही मैं कुछ नहीं कर सकती, वो कहेगी नहीं मैं नहीं मानती ये बात, क्योंकि मैंने किया है, मैं कर सकती हूँ, लिहाजा तुम भी कर सकते हो। वन कैन डू द अदर कैन डू, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसकी जो अर्न पोजीशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट करेगी। लेकिन एक दूसरी औरत है जो उसी माहौल में पली थी, वो कुछ नहीं कर सकी। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी प्री गिवननेस ने उसकी अर्न पोजीशन को काउंटर नहीं किया। वो कह रहा है नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। तो बाज औकात आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी अर्न पोजीशन से मुतासर हो जाता है, बाज औकात आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी प्री गिवननेस से मुतासर। बाज लोग सारी जिंदगी जाके कहते हैं मैं फला की औलाद हूँ, मैं फला की औलाद, मुझे इज्जत दो क्योंकि मैं फला बड़े आदमी की औलाद हूँ, मुझे इज्जत दो क्योंकि मैं एक बड़े आदमी की औलाद हूँ। तो जो भी आप सोसाइटी में कर रहे होते हैं वो आपकी अर्न पोजीशन का मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, आपकी प्री गिवननेस का मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। सर एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। तो आपकी जो अर्न पोजीशन है उसको आप ट्रांसेंड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्री गिवननेस को ट्रांसेंड नहीं कर रहे। आप जाके यूरोप में रहना शुरू कर दें तो आप काले रहेंगे हमेशा, उसका अब आप क्या कर सकते हैं। आप जाके कहें कि नहीं मैं बहुत एनलाइटेंड हूँ, ये हूँ वो, नहीं नहीं आपसे है तो काले, कुछ गड़बड़ ना कर दीजिए, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको बार बार सारी जिंदगी जब तक आप रहेंगे प्रूफ देते रहना पड़ेगा अपनी लॉयल्टी का। लेकिन पाकिस्तान में आपकी लॉयल्टी पे इतनी आसानी से कोई शक नहीं करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ आपकी प्री गवर्नेंस है ना। अगर किसी ने शक किया तो आप बहुत पावरफुली रिएक्ट कर सकते हो बनिस्बत के ब्रिटेन के अंदर। क्यों? क्योंकि जड़े यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, यहाँ पे आपको कोई गाली नहीं बख सकता है ऐसे ही, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी कलर स्किन का कलर कुछ है तुम्हें कोई गाली बख सकता है, मुश्किल है गाली, यहाँ पे किसी और वजह से गाली पड़ सकती है। तो बताने का मतलब ये कि ये जो अर्न पोजिशन होती है या तो आपकी प्री गवर्नेंस है, इसको आप ट्रांसेंड नहीं कर सकते, आपके बस से बाहर है। लिहाजा जब भी आप पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी अर्न पोजीशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर होता रहेगा। अगर मैं क्लास में लेक्चर देते हुए एक बच्चे को डांट कर जलील कर क्लास से बाहर निकाल दूं तो उसका इम्पैक्ट हर बच्चे पे एक नहीं पड़ेगा। एक बच्चा जो शोवनिस्टिक है, औरत और मर्द के तनाजुर में देखता है, वो उसको अलग तरीके से देखेगा। एक बच्चा औरतों की सुपीरियरिटी के तनाजुर में देखता है, उसको अलग रहे। एक टीचर को बुरे बदतरीन मखलूक समझता है, वो अलग तरीके से। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उसकी बुनियाद पर वो उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करेंगे। तो जो रिपोर्टिंग होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट डिटरमिन होगी उस अर्न पोजिशन से या उस क्या कहते हैं प्री गिवननेस से जिसमें वो पल के जवान हुआ। अच्छा ये तो एक साइड है। दूसरा आप आ जाए आपका प्रेजेंट। आपका प्रेजेंट भी दो चीजों से मिलके बनता है, एक आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका जहनी रुझान, एक मेंटल एटीट्यूड है आपका और एक आपकी मेंटल स्टेट है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं मेंटल एटीट्यूड उनका ये होता है कि जिंदगी का हमेशा रोशन रुख देखते हैं, होते ही ऐसे हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। यानी कि बदतरीन हालात में आप उस इंसान को छोड़ दें, उसमें कोई रोशन पहलू तलाश कर लेकर उसकी शख्सियत का खासा होता है, वो इस तरह का ही होता है, वो बड़ा करेजियस रेजिलियन होता है और बदतरीन हालात में भी बेहतरीन सोच सकता है, वो होता ही ऐसा, उसका मेंटल एटीट्यूड एक होता है। बदतरीन हालात, बेहतरीन हालात में बदतरीन सोच होता है, पेसिमिस्ट होता है, डार्केस्ट पॉसिबल साइड को वो व्यू करता है, वो होता ही ऐसा। एक आदमी एग्नोस्टिक होता है, अनक्लियर रहता है हमेशा जिंदगी के बारे में, पता नहीं है सही है, अनसर्टेन रहता है। एक आदमी स्केप्टिक होता है, हर चीज पे शक करता है। लेकिन डिलेमा यह है कि इनमें से हर एक अपने आप को हकीकत पसंद समझता है, रियलिस्ट समझता है। अब आपका जो ऐसा मेंटल एटीट्यूड है उसी किस्म की आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यानी कि अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिमिस्टिक होगा। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड पैसिमिस्टिक है तो पैसिमिस्टिक आउटपुट, यू नो। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा आपके मेंटल एटीट्यूड से। और जो इसके दूसरी साइड है मेंटल स्टेट, कि जब आप एक इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, जब आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उस लम्हे आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप खुश हैं या दुखी हैं या परेशान हैं या खौफजदा हैं। अगर आपकी मेंटल स्टेट एक जैसी नहीं, देयर आर इनफाइनाइट मोड्स ऑफ मेंटल स्टेट, 10,000 तरह की मेंटल स्टेट होती है। एक टीचर बहुत अच्छा है लेकिन उसको उसका मूड खराब है, वो सही नहीं पढ़ाएगा। एक टीचर बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो है खौफजदा है, तो वो अपना आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करेगा, पूरा स्किप कर देगा, सेंसर कर देगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो बताने का मतलब ये कि आपकी मेंटल स्टेट भी एक जैसी नहीं रहती हमेशा, लिहाजा आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये कहना कि वो हमेशा न्यूट्रल होगी, ये ठीक बात नहीं है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आपका जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट हो रही है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन दो फैक्टर से डिटरमिन हो रहा है जिन पे आपको डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय अर्न पोजिशन के, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन जमा की है वो 100% ऑब्जेक्टिव, 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। ये कंस्पिरेसी थियरी की बुनियाद पर मैं नहीं कह रहा, एक तो ये होता है कि आप लोगों से कहें कि इन्फॉर्मेशन क्यों ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इसलिए कि लोग बेईमान है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लोग ऑनेस्ट हैं, वो ऑनेस्टली कर रहा है लेकिन उसका जो पर्टिकुलैरिटी है वो अफेक्ट कर रही है ना उसको। यानी कि अगर CNN वाला जब इराक वॉर को कैप्चर करता है वो अलग तरीके से करता है, और अल जजीरा वाला अलग तरीके से क्यों करता है अलग तरीके से। CNN वाला दिखा रहा है बुड्ढी के सर के ऊपर वो अमेरिकन मेरीन पट्टी बांध रहा है, बुड्ढी का सर फटा कैसे भाई, तुम उसके मुंह पे हमला कर दिया, उसका बर्बाद कर दिया, बुड्ढी के सर पे बुड्ढी को तुम पट्टी बांध के चॉकलेट दे, और CNN वाला दिखा रहा है उसको चॉकलेट दे, भाई चॉकलेट क्यों देने की जरूरत पेश आ गई, पट्टी बांधने की क्यों जरूरत पेश आ गई। अल जजीरा दिखा रहा है लाशों के चीथड़े, बच्चे का हाथ उस दीवार से चिपका हुआ है, आदमी का सर भेजा उस दीवार पे चिपका हुआ है, ये दिखा रहा है। तो देखने का तरीका है ना, तो आप चीजों को देख रहे हैं। आपके मुल्क में जलजला आया तो मुख्तलिफ सदा काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहां चले गए गुब्बारे लेके आ जाते थे, वहां पर गुब्बारे लेके आ जाते थे कि भाई यहाँ बड़ी परेशानी है, लोग वो हो गए ये वो, हमने मालूम किया यहाँ आपके जो कैंप में बच्चे हैं इनकी फला बच्चे की आज बर्थडे, हम भाई बर्थडे मनाने आए। मैंने कहा भाई तुम इंसान के बच्चों कौन हो तुम, लोग यहाँ पर इंसानों की लाशों में से बदबू उठ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा हमसे, खाना नहीं खाया जा रहा जो नाजाबाद में पैदा होकर पापोश में मर जाने वाले लोग हैं, तुम यहाँ पर केक लेके आ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, मूवी कैमरे लेके आ गए धंधा करने के लिए। तो बताने का मतलब उनके लिए वो एक वो है अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, लोग मर गए, लोग खुशियां बांटने के लिए आ गया, लतीफे सुना रहा हुआ मतखरा आ गया वहां पे लोगों को बिठा के लतीफे सुना, उसके ख्याल में मैं ये कर सकता हूँ। तो भाई तुम ये नहीं करो ना, हंसने की जरूरत नहीं है, इंसान को रोने की जगह पे रोना ही चाहिए, हंसने का क्या मतलब है, हंसने ही क्या बात है। ये आपसे किसने कह दिया कि हंसना नेसेसरीली सुपीरियर कदर है रोने से है? ये आपसे क्या ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, कोई अच्छी बात तो नहीं, कभी नहीं हंसे कहका मार के, तो कोई काबिल कदर काम तुम नहीं कर रहे, ये लतीफे सुना दो आगे लोगों के माँ बाप दबे हुए उसके अंदर बच्चे रो रहे हैं, तो मैंने देखे इनके चेहरे मुस्कुराहट आ गई, मैंने कहा भाई ये तुम, तो इशू ये है कि वो उस बेचारे का कोई वो बदमाशी करने के लिए वहां नहीं आया, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसी की बुनियाद पर वो चीजें करता है। तो आप ये कहें कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं है, तो आप जब चीजों को वैसा देखते हैं जैसा कि वो आपको दिखाई देती है, लिहाजा वो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आपका ये फर्ज है बहजियत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन करें उस एजेंसी को जहां से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको फॉर ग्रांटेड ना ले लें, आप देखें कि इसके स्टेक होल्डर कौन है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, मुझे क्यों दी जा रही है इन्फॉर्मेशन। आज की सोसाइटी के अंदर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन को रोका जाए, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का तरीका यह है कि इंफॉर्मेशन का बहाव बढ़ा दिया जाए, इसे कैमोफ्लैज करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि स्टेट कमजोर हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नजर? इतनी हेगेमोनियस और हेगेगोरियस स्टेट कभी नहीं रही दुनिया के अंदर जितनी आज है, और उसके एजेंट कौन है? यही इंफॉर्मेशन फैलाने वाले, ओपिनियन में बिल्डअप कर देते, पैसा नहीं स्टेट के, स्टेट उनको इस तरह इस्तेमाल कर लेती है कि जब वो स्टेट के खिलाफ कर रहे होते हैं तो भी स्टेट का काम कर रहे होते हैं, और नहीं कर रहे होते तो भी स्टेट का काम, या मार्केट के खिलाफ जा रहे होते हैं तो भी मार्केट का इंटरेस्ट कर रहे होते हैं, और मार्केट के यू नो। तो इशू ये है कि आज की जो दुनिया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन जमा करने वाले लोग हैं वो सच्चाई की व्यापारी कर रहे हैं, है ना, और सच्चाई का न्यूज इज अ कमोडिटी। उसके नतीजे में जो न्यूज आपके आपको मिलती है उसके साथ आपको और भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी कदरें भी मिलती हैं आपको। अभी पोलियो डे मनाया जाए, कोई पता नहीं क्या पोलियो अस्पताल इस तरह का कुछ है, वो मैं देख रहा था टीवी पे, हाँ वो पूरा ये हफ्ता ही नहीं ये प्रोग्राम है, उसमें क्या होगा पोलियो खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्टों को बुला के सब लोग गाने, इससे पोलियो का खत्म करने का क्या पहल लो, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे पोलियो के बारे में, आप एक प्रोग्राम देंगे उसमें बहुत सारे गाने और बहुत मजे की बातें बातें होंगी, उसमें फिर बीच बीच में आपको याद दिला देंगे, देखो बेटा पोलियो अगर है तो इलाज करो, देखो भाई पोलियो है तो इलाज करो, ये भी देखो गाना भी सुनो फिर पोलियो इलाज करो। उसके नतीजे में आपको सिर्फ ये नहीं पता चला कि पोलियो एक बुरी चीज है, आपको यही पता चला गाना बजाना बहुत अच्छी बात होती है, इससे बड़ा अच्छा रहता है, इससे सेहतमंद तफरी होती है, इससे इंसान की कदरें बढ़ती हैं, इंसान को अच्छाई बुराई के बारे में पता चलता है, और ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, देखो इन लोगों कितना तुम लोगों का एहसास है, सब आए में गाना भी गा रहे हैं और तुम लोगों को बार बार बताया बेटा पोलियो तो इलाज करो, पोलियो तो इलाज करो, पोलियो। तो याद रखें आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यू न्यूट्रल नहीं मिलती, उसके साथ एक पूरा पैकेज आपको, अगर आपने उसको महज इन्फॉर्मेशन दिया तो आप डिसीव हो गए, आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी प्रेजेंट है, आपकी अर्न पर इन्फ्लुएंस होगी। ये कहना कि इन्फॉर्मेशन देने वाला बेईमान है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बेईमान है, लेकिन अगर फर्ज किया कि कंस्पिरेसी थियरी है ना, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट होने के बावजूद वो बेचारा जो कुछ भी आपको दे रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद पे दे रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को माइनस करके वो चीज को नहीं देख सकता। अगर आपने ये समझा कि ये जो मैं ले रहा हूं उस इंसान के या उस इंडिविजुअल या उस एजेंसी या उस डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस को के पॉइंट ऑफ व्यू को माइनस करके मैं ले लूं तो वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, आप अपने आप को डैमेज करें। ठीक है खालिद भाई, अभी इसको यहीं पर रोक लो, गुरु प्रकाश जी वालदेन तभी खराब है, उनको वहां जाना है, अभी कोई क्वेश्चन करना है तो 5 मिनट है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं
जी? क्वेश्चन अच्छा
अच्छा
मुझे बताइए कि किस स्टेज पर वैल्यू डिजाइन डिफाइन किया जाता है,
देखें
इन्फॉर्मेशन
देखें, एक तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप ये कहेंगे देखें भाई मैं इस बात से बहस नहीं, जैसे इसका सबसे आइडियल पैराडाइम क्या होता है कि आप एक टॉक शो कर रहे हैं, लेट सपोज कि आप एक टॉक शो कर रहे हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आपने जिंदगी को पढ़ा है, आपका मेरे से ज्यादा उम्र भी है, तजर्बा भी है, आपकी चीजों के बारे में कदर है और आपके अपने कुछ अकदार होंगे जिनको की पासदारी आप अपनी जिंदगी में करते होंगे, और कुछ ऐसे अकदार होंगे जिनके आप नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई करता है तो आप उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं ना, ये है, आप जाहिर है कि आप एक इंसान हैं, आपको एक इशू के ऊपर गुफ्तगू करवानी है, तो एंकर पर्सन की आज की दुनिया में क्या खसूसियत है कि वो अपनी कदर को इंटीग्रेट नहीं करेगा, ये बता दिया जाता है, और आप मेरे से कहते हैं सूरी साहब आप बताएं, और इनसे कह रहे हैं आप बताएं, और आप इनसे भी डिसएग्री कर रहे हैं कुछ चीजों पे, मुझसे भी डिसएग्री, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे। मेरे मुझसे भी काफी लोग बुलाते हैं तो मैं कहता हूँ भाई आप मुझे बता दें कि आपका पोजीशन क्या है, तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं एक ऐसे आदमी से बात करने पर तैयार नहीं हूँ जो अपनी पोजीशन डिस्क्लोज करने पर तैयार नहीं। दुनिया में कभी भी इंसानों ने किसी इंसान से इस बुनियाद पर बात नहीं की। एक बस के अंदर भी आपके पड़ोस में जो बंदा बैठा है उससे आप बात करते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, भाई मैं इस चीज को सही समझता हूँ, आप कहते हैं मैं इस चीज को गलत समझता हूँ, तो बात होगी ना। एंकर पर्सन कहता है मैं न्यूट्रल हूँ, बताते खुद एक अहमकाना बात है ना। आप किसी कदर को कहें ये कदर है, भाई मैं इस कदर को फैलाऊंगा, हालांकि वो कदर को फैलाता है लेकिन वो कैमोफ्लाज करके फैलाता है। तो पहली बात तो ये कि आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसके अंदर उसको फैलाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि इशू ये कि जो भी जितने भी दुनिया में लोगों ने किसी कदर को फैलाया, पहले उस कदर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनी जिंदगी में बताया और उसको प्रैक्टिस किया, और उसके लिए अगर उनकी जान देनी पड़ी उन्होंने जान दी। एट्रैक्शन में नहीं होती कदर, कदर सब्सटेंटिवली रूट करती है। और मैं चूंकि मजहबी तौर पर चीजों को देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि रिलीजन को जो चीज वायलेट करती है उसे मैं कदर नहीं समझता, उसे मैं निगेशन ऑफ वैल्यू समझता हूँ। सही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिलेटिव होती है, वैल्यू रिलेटिव होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वैल्यू ट्रेडिशनल होती है। मैं कहता हूं कि ट्रेडिशन की वो वैल्यूज जो रिलीजन के खिलाफ है, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को आपको ठीक करना पड़ेगा, तस्खीर करनी पड़ेगी अपने अखबार की, अपने आपको तस्खीर करनी पड़ेगी, अपने रवैयों की आपको तस्खीर करनी पड़ेगी, अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर की, जिस चीज की। लेकिन ये कि ये एक बड़ा काम है, इसके लिए लोगों को करना चाहिए काम। वैल्यू का डिफेंस एब्स्ट्रैक्शन में कभी नहीं होता, लेकिन जितना मीडिया है वो एब्स्ट्रैक्शन में ले जाता है, उसके नतीजे में रिलेटिवाइज होती है वैल्यू, कि ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, वो भी वैल्यू है, सब वैल्यू है। जब सब वैल्यू होती है तो कुछ वैल्यू नहीं होती। वैल्यू की डेफिनेशन ही है कि विच एक्नॉलेज द प्रायोरिटी ऑफ वन ओवर द अदर। अगर सभी बराबर की हैसियत रखती है, अखदारी हैसियत, तो इसका मतलब है किसी चीज की कोई अखदार नहीं होती। अगर सब ये है कि अखदारी सतह की है, तो इसका मतलब है किसी चीज की कोई कदर नहीं है। कदर का तायुन फर्द अपनी इंफरादी अजत में करता है। ये रिलेटिविटी ऑफ वैल्यू का पूरा तस्वीर